नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हेलो हेड मीट हार्ट हैना मॉर्गन ऑस्टिन की आत्म सहायता पुस्तक है, जो पेशेवर जीवन की थकान, भावनात्मक खालीपन और लगातार उपलब्धि पाने के दबाव के बीच फंसे लोगों को संबोधित करती है। ऑस्टिन कॉर्पोरेट नेतृत्व और बर्नआउट रोकथाम के अनुभव से लिखती है। पुस्तक का उद्देश्य केवल तनाव कम करने के तात्कालिक उपाय देना नहीं है, बल्कि पाठक को यह पहचानने में सहायता देना है कि बाहरी रूप से सक्षम दिखते हुए भी भीतर असंतोष, अलगाव या थकावट कैसे जमा हो सकती है। शीर्षक में हेड और हार्ट का मिलन तर्क योजना और जिम्मेदारी को भावनाओं, मूल्यों और भीतर की आवाज के साथ जोड़ने का संकेत है। लेखिका बर्नआउट को व्यक्तिगत कमजोरी के बजाय जीवन और काम की असंगतियों का संभावित परिणाम मानती है। व्यक्तिगत अनुभवों, पेशेवर अवलोकनों और अभ्यासों के सहारे यह पुस्तक आत्मचिंतन, आत्मकरुणा, सीमाओं तथा अधिक सचेत निर्णयों की दिशा सुझाती है। इसका स्वर प्रेरक होने के साथ व्यावहारिक है और इसका केंद्रीय आग्रह है कि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा में सक्रिय भागीदारी फिर से प्राप्त करे। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बर्नआउट को केवल थकान नहीं, भीतर और बाहर के असंतुलन के रूप में देखना। पुस्तक का आरंभिक योगदान बर्नआउट की उस सामान्य छवि को चुनौती देना है, जिसमें इसे सिर्फ अत्यधिक काम के बाद होने वाली थकान मान लिया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार, व्यक्ति काम, परिवार और जिम्मेदारियों में कार्यक्षम दिखाई दे सकता है, फिर भी भीतर से अनुत्साहित, असंबद्ध और लगातार दबाव में हो सकता है। विशेष रूप से वे लोग जोखिम में हो सकते हैं जो हर समस्या को ठीक करने, सबकी अपेक्षाएं पूरी करने और कमजोरी ना दिखाने की आदत रखते हैं। ऐसी स्थिति में उपलब्धि और पहचान की बाहरी व्यवस्था चलती रहती है, पर व्यक्ति अपनी जरूरतों, सीमाओं और इच्छाओं से दूर होता जाता है। पुस्तक इस अंतर को समझने के लिए रुकने और ईमानदार आत्मनिरीक्षण पर बल देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कठिन काम बर्नआउट है, बल्कि यह देखना है कि क्या विश्राम के बाद भी खालीपन बना रहता है, क्या विकल्पहीनता महसूस होती है और क्या जीवन के निर्णय केवल कर्तव्य से संचालित हो रहे हैं। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतही समाधान जैसे थोड़े समय का आराम या बेहतर समय प्रबंधन गहरे असंतुलन को हमेशा नहीं बदलते। पाठक को अपने अनुभव के संकेतों को गंभीरता से लेने और सहायता या बदलाव की आवश्यकता को स्वीकारने की जगह मिलती है। दूसरा, तर्क और भावना के बीच संवाद बनाना। निर्णय का अधिक पूरा आधार हेलो हेड मीट हार्ट का मुख्य रूपक तर्क और भावना के बीच विरोध नहीं, बल्कि संवाद का प्रस्ताव रखता है। पेशेवर परिवेश अक्सर विश्लेषण, उत्पादकता और परिणामों को प्राथमिकता देता है। ये क्षमताएं उपयोगी हैं, लेकिन जब निर्णय केवल बाहरी लक्ष्यों और दिया दूसरों की स्वीकृति से निर्देशित हो, तो व्यक्ति अपनी भावनात्मक वास्तविकता को अनसुना कर सकता है। ऑस्टिन पाठक को अपने भीतर की बुद्धि की ओर लौटने के लिए कहती है। इसका व्यावहारिक अर्थ आवेग में केवल दिल की सुनना नहीं है, बल्कि भावनाओं को सूचना की तरह समझना है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, निरर्थकता या राहत जैसी प्रतिक्रियाएं बता सकती है कि वर्तमान गति, संबंध या भूमिका व्यक्ति के मूल्यों से मेल खा रही है या नहीं। इसके बाद हेड की भूमिका इन संकेतों को ठोस विकल्पों, प्राथमिकताओं और योजनाओं में बदलने की है। इस प्रकार पुस्तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कामकाजी जीवन से अलग विषय नहीं मानती। बेहतर निर्णय के लिए तथ्य, दायित्व और संभावित परिणामों के साथ व्यक्ति की ऊर्जा, अर्थबोध और सीमाओं को भी देखना जरूरी है। यही संतुलन पाठक को ऑटोपायलट से बाहर आने और अपनी परिस्थितियों के भीतर अधिक सजग विकल्प बनाने में मदद कर सकता है। तीसरा, ऑटोपायलट से बाहर निकलकर अपने जीवन की दिशा की जिम्मेदारी लेना। पुस्तक में ऑटोपायलट उस स्थिति का उपयोगी संकेतक है जिसमें व्यक्ति दिनचर्या निभाता रहता है, पर यह नहीं पूछता कि उसकी मेहनत किस दिशा में जा रही है। कॉर्पोरेट उन्नति, सामाजिक अपेक्षाएं और दूसरों के लिए विश्वसनीय बने रहने की इच्छा कई बार पहले से तय रास्ते को स्वाभाविक बना देती है। ऑस्टिन का आग्रह है कि पाठक स्वयं को अपने जीवन का सीईओ माने। यह रूपक नियंत्रण के भ्रम का वादा नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति आर्थिक, पारिवारिक और संस्थागत सीमाओं में रहता है। इसका आशय अपनी उपलब्ध पसंदों, ध्यान और अगले कदम की जिम्मेदारी स्वीकारना है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि बदलाव को केवल नाटकीय इस्तीफे या पूर्ण जीवन परिवर्तन से नहीं जोड़ा जाता। पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्यक्ति कौन है, क्या चाहता है और किन बातों को अब आगे नहीं ढोना चाहता। इस स्पष्टता के बिना नया लक्ष्य भी पुराने दबाव का दूसरा रूप बन सकता है। आत्मचिंतन और छोटे भागीदारी वाले अभ्यास पाठक को अपनी कहानी, भूमिकाओं तथा प्राथमिकताओं पर विचार करने का अवसर देते हैं। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों को नाम दे पाता है, तब वह सीमा तय करने, मदद मांगने बातचीत करने या क्रमिक बदलाव जैसे अधिक ठोस कदमों पर विचार कर सकता है। इस अर्थ में स्वायत्तता अकेले सब संभालना नहीं बल्कि जानबूझकर जीवन का संचालन करना है। चौथा, आत्मकरुणा। शांति और असुरक्षित महसूस होने पर सहायता स्वीकारने की भूमिका। ऑस्टिन के बर्नआउट संबंधी दृष्टिकोण में आत्मकरुणा एक आवश्यक सुधारात्मक अभ्यास है। अत्यधिक जिम्मेदारी लेने वाले लोग अक्सर अपने संघर्ष को अनुशासन की कमी या निजी विफलता समझते हैं। इससे वे और अधिक प्रयास करते हैं, अपनी जरूरतों को टालते हैं और सहायता मांगने से बचते हैं। पुस्तक इस चक्र से हटकर शांत क्षणों में अपने अनुभव के प्रति ईमानदार होने की बात करती है। शांति यहाँ केवल आराम का विलास नहीं है, यह वह मानसिक स्थान है जिसमें व्यक्ति यह देख सकता है कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है और किन हिस्सों को लगातार दबा रहा है। आत्मकरुणा का अर्थ कठिन परिस्थितियों से भागना या जवाबदेही छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ कठोर आत्म आलोचना के बजाय ऐसा रवैया अपनाना है जो वास्तविक समस्या को देखने योग्य बनाए। पुस्तक की व्यावहारिक दिशा स्वस्थ संबंधों से भी जुड़ती है। जब व्यक्ति अपनी सीमाएं और जरूरतें समझता है तो वह उन्हें दूसरों के सामने अधिक स्पष्टता से रख सकता है। सहायता स्वीकारना, संवेदनशीलता दिखाना और भरोसेमंद लोगों के साथ संवाद करना कमजोरी नहीं, पुनर्निर्माण के साधन हो सकते हैं। यह विचार विशेष रूप से उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो बाहर से सब कुछ संभालते दिखते हैं लेकिन भीतर अकेलेपन या दबाव का अनुभव करते हैं। अंत में, व्यक्तिगत उपचार के साथ हसल संस्कृति की सीमाओं को पहचानना। यह पुस्तक व्यक्तिगत विकास की भाषा का उपयोग करती है, फिर भी उसका संदर्भ व्यापक कार्य संस्कृति से जुड़ा है। ऑस्टिन का पेशेवर अनुभव ऐसे वातावरण की ओर संकेत करता है जहां लगातार व्यस्त रहना, हर समय उपलब्ध रहना और अगली उपलब्धि की ओर बढ़ना सामान्य मानक बन सकते हैं। ऐसी हसन संस्कृति में बर्नआउट को व्यक्ति की सहन शक्ति की समस्या मानना आसान है। पुस्तक का महत्व इस बात में है कि यह पाठक को भीतर की ओर देखने के लिए कहती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि दबाव केवल निजी आदतों से पैदा नहीं होता। इसलिए उपचार को केवल स्पा, छुट्टी या उत्पादकता बढ़ाने वाले तरीकों तक सीमित करना अपर्याप्त है। यदि काम की अपेक्षाएं, संबंधों की असमानता या स्वयं के मूल्य लगातार थकावट पैदा कर रहे हों तो टिकाऊ बदलाव के लिए उन पैटर्नों को पहचानना होगा। पुस्तक के अभ्यास और आत्मचिंतन इसी पहचान की शुरुआती जमीन बनते हैं। हालांकि संस्थागत नीतियों का विस्तृत खाका इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं दिखता, फिर भी इसका संदेश प्रबंधकों और संगठनों के लिए भी प्रासंगिक है। जब कल्याण को निजी समस्या मानकर छोड़ दिया जाता है तो सक्षम कर्मचारी भी चुपचाप टूट सकते हैं। इस तरह पुस्तक व्यक्तिगत एजेंसी और कार्यस्थल की जिम्मेदारी के बीच संबंध पर विचार करने का अवसर देती है। निष्कर्ष में, हेलो हेड मीट हार्ट उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी हो सकती है जो लगातार जिम्मेदारियां निभाते हुए भी थकावट, दिशा की कमी या भीतर के असंतोष का अनुभव कर रहे हैं। यह विशेष रूप से कॉर्पोरेट पेशेवरों, प्रबंधकों और उन लोगों से संवाद करती है जो अपनी पहचान को प्रदर्शन, भरोसेमंदी और उपलब्धि से बहुत गहराई से जोड़ चुके हैं। पाठक को इसमें बर्नआउट पहचानने की भाषा, आत्मचिंतन के लिए प्रश्न और अपनी सीमाओं, जरूरतों तथा प्राथमिकताओं को अधिक गंभीरता से लेने की प्रेरणा मिल सकती है। पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य उपचार या गंभीर परिस्थितियों में पेशेवर सहायता का विकल्प नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जागरूकता और अधिक ईमानदार बातचीत के लिए उपयोगी सहारा हो सकती है। समान आत्म सहायता पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान लेखिका के कॉर्पोरेट नेतृत्व और बर्नआउट रोकथाम के अनुभव में है। यह केवल सकारात्मक सोच या तेज उत्पादकता का संदेश नहीं देती, इसके बजाय यह पूछती है कि व्यक्ति की बाहरी सफलता और भीतरी अनुभव के बीच कितना मेल है। हेड और हार्ट का ढांचा सरल है, पर इसकी उपयोगिता इसी में है कि यह तर्कपूर्ण योजना और भावनात्मक सत्य दोनों को निर्णय का हिस्सा बनाता है। पुस्तक की पहुंचने योग्य शैली और अभ्यास आधारित रुख उन पाठकों के लिए लाभकारी है जो भारी सिद्धांतों के बजाय क्रमशः अपने जीवन की दिशा पर काम शुरू करना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं हना मॉर्गन ऑस्टिन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।